الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والذين دنا فتدلى أبي القاسم محمد. اللهم صل
صلي على محمد وآل محمد وعجل.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعني نور الله، أذن الله، يد الله، حبل الله، عروة الوثقى، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، علي ابن أبي طالب عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد وعجل فرج.
بحق زهراء، بحق زهراء، بحق زهراء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. ہماری گفتگو چل رہی تھی اس عشرے کی نفس کی طہارت کے اوپر، اور کل تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ گئی تھی. میں نے کہا تھا تھوڑا سا میں ذرا میں نے ڈرائی گفتگو کی فقط عبودیت کو بتانے کے لیے کہ اگر عبادت کریں تو عبادتوں میں لذت کس طرح آئے گی، اور اس کی وجہ سے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ٹاپک سے ہٹ گئی تھی. اور پھر آج ہم اپنے ٹاپک پر آ جائیں، نفس کی طہارت. مولا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں، مگر مجھے یہ پتا کس طرح چلے کہ محبت میری محبت میں شدت کتنی ہے، کہ میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، کم چاہتا ہوں، مجھے کس طرح پتا چلے. تو امام نے اس کا جواب بہت بہترین جواب دیا، جو اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور عمل پہ آ جائیں تو پھر لذت الگ ہے. امام نے کہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہو تو اس کے لیے اپنی اطاعت کو دیکھو. اگر تمہاری اطاعت میں شدت ہوگی تو محبت میں بھی شدت ہوگی. جو اطاعت زیادہ ہوگی تو محبت میں، وہ واقعہ نہیں پڑھوں گی، آپ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اکثر آگل پہلے کی ذاکروں کا ایک ٹرنڈ تھا کہ وہ یہ ہارون مکی کا واقعہ بہت پڑھتی تھی، کہ امام سے جب آ کے کہا کہ مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مولا نے کہا کہ جاؤ اس تندور میں بیٹھ جاؤ. تو ایک مرتبہ سے کہ مولا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آگ میں جا کے بیٹھ جاؤں. مولا نے کہا اتنے میں ہارون مکی آیا، مولا نے اشارہ کیا، ہارون تندور بغیر کوئی سوال اور جواب کے فوراً تندور میں جا کے بیٹھ گئے، اور پھر مولا اپنی باتیں کرنے لگے اور سب پریشان تھے کہ وہ اندر کباب ہو گیا ہوگا. تو اطاعت، عزیزان محترم، اطاعت میں جتنی شدت ہوگی محبت اتنی شدید ہوگی. اور پھر رتبے سے راہیں، میں نے شروع سے عرض کیا ہے کہ میں اپنی آخری مجالس میں عرفا اور مجتہدین کا ذکر کروں گی، جو کہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں ایک تمنا اٹھتی ہے کہ اے کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں. اور ان کی زندگیوں میں اتنی زیادہ معجزات، کیونکہ اکثر مومنین سے جب یہ کہا جائے کہ اطاعت کرو، اور تو ایک جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو امام تھے، مولا کی اطاعت کس طرح کتنا مشکل ہے، امام جیسا بننا. تو امام جیسا نہ بنے تو مجتہدوں جیسا تو بن سکتے ہیں، وہ تو امام نہیں ہے، وہ تو مجتہد ہیں، ایک انسان ہے. مگر جب نفس کو طاہر کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بہت ساری معجزاتی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج میں چند واقعات پیش کروں گی، اس میں سے آیت اللہ بحر العلوم کو میں نے چنا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ جو ہے وہ नफ्स की तहारत और जो है हमें उनकी जिंदगी से जो है बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। तो मैंने इनको लिया है, मगर इससे पहले मैं आगा खुमैनी के बेटे आगा मुस्तफ़ा जो बहुत यंग थे, शबाहत का जमाना था, जवान थे एकदम, और जो है वो आगा खुमैनी को खत लिखा, क्योंकि आगा ईरान में थे और वो इराक में थे। हमने खत लिखा और लेटर में ये लिखा कि बाबा मैं एक उस्ताद के पास तालीम हासिल करना चाहता हूँ। तो इमाम खुमैनी, जब इंसान के पास फिक्र आती है तो उसका हर चीज को चॉइस करने का और लेने का नजरिया बदल जाता है। जब उसकी फिक्र में मारिफत आती है तो हर चीज में मारिफत आती है, वो एकदम से कोई चीज को ले नहीं लेता। तो इन्होंने जब लिखा अपने बाबा को कि मुझे एक प्रोफेसर मिले, मुझे उनसे दर्स लेना है, तो इमाम खुमैनी ने कहा ये एक हम सब के लिए दर्स है कि जब आप इल्म लेने भी जाए तो इमाम खुमैनी ने कहा जो तुम अपने उस्ताद के पास जा रहे हो तो पहले उन्हें उनसे कुछ सवाल करो और वो उसके जवाब सही दें, उसके बाद फिर उनसे तालीम हासिल, उनका इम्तहान लो, अपने प्रोफेसर का एक इम्तहान लो, फिर उनसे तालीम हासिल करो कि वो काबिल भी हैं, उनकी कल्ब की आंखें खुली हुई भी है कि नहीं। तो उन्होंने कहा बाबा मैं क्या सवाल करूं, तो इमाम खुमैनी ने कहा मैं सवाल करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब लेकर आओ। तो कहा ठीक है। तो अब इमाम खुमैनी ने सवाल कोई बहुत डिटेल वाइज नहीं लिखा, सिर्फ इमाम खुमैनी ने कहा कि उनके पास जाना और उनसे कहना कि मेरे बाबा ने आपसे सवाल पूछा है, और मैं मैंने तहरीर करके उस खत में लिख के भेजा कि मैंने बहुत जवानी में एक ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर क्या है। ख्वाब नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ ताबीर पूछी। अब ये जो आगा मुस्तफा है वो लेटर लेकर चले किसके पास गए, आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम के शागिर्द आगा कश्मीरी के पास, आगा कश्मीरी के पास गए और आगा कश्मीरी से उन्होंने सलाम किया, उनके दर्स में नहीं जाना था सीखने के लिए। तो उन्हें लेटर दिया और उन्हें कहा कि मेरे बाबा ने आपसे सवाल पूछा है। अब जब आगा कश्मीरी ने लेटर को खोला तो उसमें लिखा था कि मैंने बहुत यंग एज में ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर जानना चाहता हूँ, ना ख्वाब की डिटेल ना कुछ। अब यहाँ आगा मुस्तफा कहते हैं कि आगा कश्मीर ने ना सिर्फ ख्वाब बयान किया, ख्वाब की ताबीर बयान की, और जब ख्वाब की ताबीर बयान कर दी उसके बाद उन्होंने लेटर को बंद करके मुझे हाथ में दिया और कहा अपने बाबा से कहना कि उनको इनकलाब ईरान की पेशगी में मुबारकबाद दे रहा हूँ, पहले से मुबारकबाद दे रहा हूँ, अभी ईरान का इनकलाब नहीं आया था, आया नहीं था उससे पहले उन्होंने कह दिया। तो अजीजाने मोहतरम, ये मेरे और आपके लिए नफ्स के जहाद की सबसे बड़ी मिसाल है। आगा खुमैनी के मुतालिक मिलता है कि एक मरतबा उनके शागिर्दों ने आके कहा कि आगा दूर दूर से सहाफी आए हैं, न्यूज़पेपर वाले आए हैं और आपका पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होगा, आपका जो है इंटरव्यू पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। अब अगर मैं और आप होते तो जल्दी जल्दी तैयार होते कि भाई दुनिया में लाइव टेलीकास्ट। आगा बहुत ही सुकून में थे। आगा बाहर निकले, अपने शागिर्दों से कुछ नहीं कहा, बाहर निकले, वो सारे प्रेस रिपोर्टर्स बैठे हुए थे पूरा तैयारी के साथ कि आगा इंटरव्यू देंगे। आगा ने आके कहा कि आज जुमे का दिन है, मुझे अपने नाखून काटने और मुझे गुस्से जुम्मा उतारना है, फिर मुझे जुम्मा नमाज पढ़ानी। आगा ये कह के वापस आ गए। जब दुनिया की मोहब्बत नहीं होती है ना तो फिर इंसान की फिक्र और सोच बदल जाए, और इंकलाब भी मिला क्योंकि पता था कि खुदा की तरफ से एक है ये। जब आप इलाही काम के लिए इंसान निकलता है तो फिर उसको लोगों की फिक्र नहीं रहती। आज मेरी और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल और परेशानी क्या है कि मुझे सबकी फिक्रें पड़ी है, उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, उसको खराब लग जाएगा, उसको खराब लग जाएगा, मगर फकत और फकत मुझे एक फिक्र नहीं, वो मेरे खुदा की, कि मैं जो भी करूंगी आया इस काम में मेरा वक्त का इमाम राजी होगा या नहीं, आया ये करने से खुदा राजी है या नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ जहां जाती हूँ वहां कहती हूँ, जहां मजलिस से पढ़ाई वहां कहा, हमेशा कहा कि अपने बच्चों की तरबियत करनी है तो उनको एक छोटी सी चीज बचपन से उनके अंदर डाल दीजिए। वो क्या डालिए? बचपन से डाल दीजिए कि कोई भी काम जिंदगी का करो, कोई भी काम करने से पहले एक फिक्र अपने दिमाग में रख लो कि आया अगर वक्त का इमाम अभी मेरे साथ मौजूद हो तो वो मेरे साथ ये काम करेगा या नहीं करेगा। अगर इमाम नहीं करेंगे तो मुझे वो काम नहीं करना है। अजीजाने मोहतरम, सबसे बेहतरीन मिसाल जो नफ्स के जिहाद की है वो आगा हुसैन तवतवाई की है, हाफिज कुरान जिनके बारे में मिलता है, दुश्मनों के शहर में जाकर ऐसी तिलावत करके आए कि आखिर में वो लोग भी हैरान हो गए कि क्या कुरान की। जब सवाल किया गया उनके बाबा से, 4 साल की उम्र में मुकम्मल हिफ्ज कुरान था, मुंह पे कुरान से ही बात करते थे, क्या किया माँ बाप से पूछा गया ऐसा क्या किया, तो उनके वालिद ने क्या कहा कि जब मैंने शादी का, मेरी बीवी के लिए मैंने जब शादी का रिश्ता रखा तो मुझे हक मेहर के लिए जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरा हक मेहर मुझे ये चाहिए कि आप कुरान को हिफ्ज कर ले। और फिर वो कहते हैं इसी तरह मैंने भी अपनी जोजा से होने वाली ये कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी कुरान को हिफ्ज करें। और शादी होते ही हम लोगों ने कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं कि इसी दौरान इस बच्चे की विलादत हुई, हम कुरान को भी हिफ्ज कर रहे थे उनका ये बच्चा। और जब 2.5 साल की इस बच्चे की उम्र हुई तो आलम ये था कि हम लोग बकरा, सूरह बकरा की एक पहली आयत पढ़ते थे, बच्चा दूसरी आयत से पढ़ना शुरू कर देता। तो ये फिक्र होनी चाहिए मेरे अंदर, फिक्र जब मेरी कल्ब की नूर खुलता है, कल्ब की रोशनी खुलती है, कल्ब की आंख खुलती है तो मेरी फिक्र बदल जाएगी। मेरी फिक्र ये नहीं रहेगी कि अगर मैं यंग भी हूं, यूथ भी हूं, तो मेरी फिक्र ये नहीं रहेगी कि मुझे एक पैसे वाले आदमी से शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे उस ऐसे आदमी से शादी करनी है जो डॉक्टर या इंजीनियर हो। मैं पहले भी अर्ज कर चुकी, कोई फायदा नहीं है इन डिग्रियों का। जो विलायत नहीं है तो सारी डिग्रियां बेकार हैं। अजीजान मन, अब आयतुल हम बहरुल उलूम के मुतालिक बात करेंगे थोड़ी सी, और फिर क्योंकि अबुल फजल अब्बास के मसाइब हैं, मैं हजरत अब्बास का एक मौजजा पढ़ूंगी और फिर मसाइब और चंद मसाइब के जुमले और आपकी जहमतों को तमाम कर दूंगी। आगे बहरुल उलूम के मुतालिक बहुत कुछ मिलता है, मगर इनका एक वाकिया जो मुलाकात इमाम जमाना किताब सैयद अब्तही की उसके अंदर है, मुझे बहुत दिल को छू लिया। और उसके अलावा भी इनकी दूसरी किताबों में भी बहुत, जब करामात के बारे में, मुश्तहिदों की करामात की किताब आप उठाएंगे तो उसमें कई किताबें हैं कि जिनके अंदर इनके वाकियात बहुत ज्यादा मिलते हैं बहरुल उलूम के। इनका एक वाक्य मिलता है, इनके एक शागिर्द थे जैनुल आबदीन। बाज़ाकत होता है कोई एक शागिर्द जो होता है वो बहुत नजदीक होता है, बहुत अटैच होता है। तो इनके शागिर्द ने इनका ये वाक्या कोट किया है, कहा कि हम लोग तालिबे इल्म सब बैठे थे और एक मरतबा एक बहुत बड़े हमारे मदरसे में विजिट करने के लिए एक बहुत बड़े उर्फा आए आगा हाजी, और उन्होंने हम सब से मुलाकात की, आगा बहरुल उलूम से भी मुलाकात की, हम सब मौजूद थे उनका कमरे के अंदर। जब सबसे बात कर ली उस आगा ने, बड़े उलमा ने, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे सैयद बहरुल उलूम से तन्हाई में कुछ बात करनी है। तो यहाँ आगा जैनुल आबदीन जो इनके कह लें बेटे की तरह थे, राइट हैंड थे, सब जब तालिबान चले गए तो जैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ के आ गए बहरुल उलूम ने रोक लिया, तुम बैठ जाओ। बैठ गए और सैयद हाजी आगा हाजी से कहा कि आपको जो सवाल करना है आप कीजिए। तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा कि मैं बहुत ज़ईफ उलूम हूँ और इतनी बड़ी उम्र हो गई मगर ऐसी करामात मुझे नहीं मिली। आयतुल्ला बहरुल उलूम से बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे, ज़ईफ नहीं थे, यंग एज थी, काफ़ी एकदम यंग भी नहीं कह सकते आप, एकदम बड़ी उम्र, नॉर्मल एज थी। तो कहा कि आपका मर्तबा इतना अजीम और बुलंद है, करामात नज़र आ रही हैं आपके चेहरे से, ऐसा क्या है कि जो आप इतनी बड़ी मंजिल पर पहुंचे हैं? क्योंकि इनके बारे में ये बहुत मिलता है कि इमाम ज़माना से बारहा मुलाकात, इनकी मुलाकात इमाम ज़माना की किताब भरी पड़ी है बहरुल उलूम की मुलाकात से, बहुत ज्यादा मुलाकात करते थे इमाम ज़माना उस दौर में, कि जब यहाँ तक के उलमा कहते थे कि कोई कह दे कि इमाम ज़माना से मुलाकात की है तो समझना ये झूठ है, तो ये शायरी करते थे कि मैं किस तरह इसको झूठ कह दूं जब मैं खुद मुलाकात करता हूं इमाम से। तो इनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, बहुत इसरार किया, जब बहुत इसरार किया तो आगा ज़ैनुल आबिदीन और आगा बहरुल उलूम ने कहा कि जब तक मैं हयात हूँ ये बात ना निकले। और फिर उसके बाद आगा ज़ैनुल आबिदीन ने, इनके जो शागिर्द थे इनकी भी बहुत करामात मिलती है, इन्होंने फिर ये वाक्य को कोट किया, ये मुलाकात को कोट किया ये दोनों की। और वो कहते हैं कि बस जब बहुत इसरार किया तो इन्होंने कहा कि हाँ, मुझे याद है कि एक मरतबा मैंने ख्वाब में जनाब फातिमतु ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि
मुहम्मद वाजिल फरज,
बीवी फातिमतु ज़हरा को देखा मैंने एक दफा, मैंने देखा कि मैं सैयदा के घर में हूँ, बहरुल उलूम कहते हैं, और बीवी फातिमतु ज़हरा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बुलाए, कहा यहाँ बहरुल उलूम मेरे बेटे इधर आओ, बीबी सैयदा कह रही है। और फिर बहरुल उलूम कहते हैं कि बीबी फातिमतु ज़हरा ने कहा कि मैंने तुम्हें कुछ खाना है, तुम कुछ खाओगे? तो बहरुल उलूम ने ख्वाब में कहा, मैंने उनसे कहा कि जी मैं खाऊंगा। तो बीबी फातिमतु ज़हरा वो कहते हैं कि एक बाउल में, एक कप में बीबी जो है वो दाल लेकर आई, और दाल वो पूरी दाल बीबी फातिमतु ज़हरा ने अपने हाथ से मुझे खिलाई और मैंने खाई। और फिर इसके बाद जब मैं वो दाल खा चुका पूरा बॉल बीबी फातिमतु ज़हरा के हाथ से, फिर वो कहते हैं कि बीबी ने कहा अपने जज से मुलाकात करोगे? तो मैंने कहा हाँ। और फिर बीबी फातिमतु ज़हरा उनको एक रूम में ले गई। वो जब रूम में, वो कहते हैं मैं दाखिल हुआ तो उसकी चौखट जो थी, वो रूम की चौखट वो पुराने जमाने की स्टाइल की थी कि जैसे कि आप एक दो सीढ़ी उतरे फिर कमरा आए, दो 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 स्टेप उतर के कमरा था। तो वो कहते हैं जब दरवाजे पे मैं आया तो दरवाजे चौखट पे अमीरुल मोमिनीन खड़े थे, रूम के एंट्रेंस में अमीरुल मोमिनीन खड़े थे और अंदर रसूल अल्लाह बैठे हुए थे एक तख्त पर। और रसूल ने मुझे इशारा किया कि बहरुल उलूम यहाँ के मेरे तख्त पर बैठो। और वो कहते हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन चौखट पे खड़े थे, अब जो मैं अगर तख्त पे बैठता, तख्त क्योंकि तख्त था, और अगर मैं चौखट पे बैठता तो रसूल अल्लाह का मर्तबा नीचे हो जाता, वो नीचे हो जाता, और अगर मैं तख्त पे बैठता तो जमीन इस तरह से ऊंची और नीची थी कमरे की कि चौखट में ऐसे चढ़ के उतर के तो जा रहा था मगर चढ़ी भी थी, वो रसूल अल्लाह जिस तरह बैठे थे वो वहां की जमीन चढ़ी भी थी, तो मैं अगर वहां बैठता रसूल के साथ तो अली नीचे हो जाते, अगर मैं यहाँ बैठता तो रसूल नीचे हो जाते। तो उनका मुझे समझ नहीं आ रहा था एक लम्हे के लिए। उस वक्त बहरुल उलूम कहते कि पूरे कमरे को मैंने नाप तोल किया और जो कोना ये दोनों बुजुर्गों से नीचे हो रहा था मैं वहां जाके बैठ गया। जब मैं वहां बैठा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया और कहा बहरुल उलूम तुम्हारी इस अदा से मैं बहुत खुश हुआ। और फिर उसके बाद आगा जैनुल आबदीन लिखते हैं कि बहुत बहरुल उलूम बोल कहते कहते खामोश हो गए और उन्होंने कहा कि आपके बहुत इसरार पर मैंने इस मुलाकात के चंद वाकयात आपको बता दिए। फिर उन्होंने सवाल किया हाजी आगा हाजी ने कि क्या आपने सवाल जवाब भी किए रसूल और अली से, तो उन्होंने कहा मगर ये सवाल जवाब मैं नहीं बता सकता। तो जब नफ्स ताहिर हो जाता है तो फिर बीबी सैयदा इस तरह करामात देकर चली जाती हैं कि पूरा का पूरा दाल आप अहले बैत, मैंने अभी गुज़िश्ता मजलिसों में पढ़ा था कि आगा शुस्तरी को सिर्फ एक लुकमा रोटी का खिलाया था, तो वो कहते हैं कि उस दिन के बाद से मैंने कभी किताब नहीं खोली, मैंने करबला के मैदान को आंखों से देखा। तो जो पूरा दाल का बॉल बीबी फातिमा तो जहरा के हाथ से खाएं, तो उनकी इल्म की, उनकी फिक्र की, उनकी इबादतों की क्या वैल्यू होगी। इनके बारे में मिलता है कि जहद और तकवा इतना ज्यादा था कि एक मुलाकात इमाम जमाना की मिलती है कि इमाम जमाना से जब मुलाकात की, इन्होंने कहा, इमाम जमाना ने मुझे कहा मेरे नजदीक आओ, नजदीक आओ, नजदीक आओ। जब इतना नजदीक आ गया, पहले तो वो नजदीक जाने को घबरा रहे थे, उनका मुझे मुझे शर्म आ रही थी कि मैं मौला के इतना नजदीक क्यों, और आखिर मौला ने अपने सीने से लगाया इमाम जमाना ने बहरुल उलूम। इनके बारे में मिलता है कि जब इनका इंतकाल हो गया तो सैयद अली आका काजी जो है वो बहुत बड़े मुश्तहिद, मैं पहले भी जिक्र कर दी, आयतुल्ला बहजत के भी प्रोफेसर और हुसैन तबा तबाही के भी प्रोफेसर, हसन तबा तबाही के भी प्रोफेसर। आगा हसन तबा तबाही जो थे उनको एक उन्होंने एक इल्म सीखा था, क्योंकि जब उर्फा हो जाते हैं आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं, मौजिजात होते हैं, जो बास मौजिजात वो लोग नहीं बताते, मगर इनके बारे में मशहूर था आगा हसन तबा तबाही के बारे में कि वो हमेशा रूहों को बुलाकर मुलाकात करते थे, पाक रूहों को जो वादी सलाम में उनसे वो मुलाकात करते थे, इनके बारे में मशहूर था। इन्होंने काफी उर्फाओं की रूह को बुलाया, मगर जब बहरुल उलूम की रूह को इन्होंने बुलाया तो नहीं आए वो, और उन्होंने एक मैसेज भेजा। और वो क्या मैसेज था, बहरुल उलूम की जिंदगी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि बहरुल उलूम बेहतरीन नमूना और मिसाल है हम सब के लिए कि जब नफ्स ताहिर होता है तो तोहफा, मैंने पहले भी बताया था कि मैं बताऊंगी कि तोहफा क्या मिलता है, ये दुनिया में इतनी कुर्बानियां देता है इंसान तो फिर तोहफा क्या मिलता है, ये तोहफा फिर ऐसे तोहफे मिलते हैं कि मैं उस दफा भी आगा अब्दुल हुसैन अलमीनी की जो है मैंने बरज़खी जिंदगी के बारे में पॉइंट छोड़ दिया था, वो आज कंप्लीट करूंगा, और बहरुल उलूम का ये मरने के बाद जब इन्हें बुलाया गया तो इन्होंने मैसेज भेजा कि मैं नहीं आ सकता, उसकी वजह ये मुझे माजरत करो क्योंकि मैं बरज़खी दुनिया में अमीरुल मोमिनीन के घर का दरबान हूं, मैं एक सेकंड के लिए भी मौला अमीरुल मोमिनीन को छोड़ के आना नहीं चाहता। अजीजान तोहफे मिलते हैं जब हम अल्लाह और अहले बैत के लिए कुर्बानी देते हैं, तो फिर ये लोगों से हम दूर नहीं हो सकते। मैंने शुरुआत में क्या बोला मेरी मजलिस के कि इमाम ने कहा जितनी इताअत होगी उतनी मोहब्बत होगी हमसे भी, तुम्हारी भी, और हम भी उतनी मोहब्बत तुम लोगों से करेंगे। तो यहाँ आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन अल अमीनी के बारे में मिलता है कि जब वो इनका इंतकाल हो गया था तो उन्होंने अपने बेटे के ख्वाब में आके कहा था कि मुझे एक चीज बहुत ही मुझे सरशार हो गया, मैं वो कहते हैं कि जब मैं हौजे कौसर पे पहुंचा हूँ, हौजे कौसर पे पहुंच कर कौसर की नहर को पी लेना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा जब मैं हौजे कौसर पे पहुंचा तो मौला अली खड़े होकर पिला रहे थे मुझे अपने हाथों से, और ये जुमले थे अमीरुल मोमिनीन के मुंह पर जिन्होंने, मैंने पहले आपको बता चुकी कि ख्वाब में आके मौला ने क्या कहा था, दुनिया में शफा नहीं दूंगा, पाँव की तकलीफ थी, तो आखिरत में मौला खड़े होकर खुद अपने हाथों से जामे कौसर पिलाए, कहा कि अब अमीनी तुमने मेरे लिए जो जहमतें उठाई हैं उसका शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता, अमीरुल मोमिन की जुमले। तो जब मेरा नफ्स ताहिर और मैं पाक होती हूँ तो फिर अहले बैत जो है वो करीम इब्ने करीम है, वो तो उसको भी देते हैं जो गुनहगार होता है, तो फिर हमें क्यों नहीं देंगे अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और अपने नफ्सों को ताहिर करें। अबुल फजल अब्बास का दिन है आजादारन जहरा, एक मौजिजा आपकी खिदमतों की नजर करूंगी। मुझे लगता है शायद कनाडा की मोमिन ने सुन लिया होगा, मगर क्योंकि मेरे प्रोफेसर से मैंने सीखा है तो मैं हमेशा हजरत अब्बास की मजलिस में कोशिश करती हूँ कि ये जिक्र जरूर हो। और अब्दुल मसीह नाम का एक ईसाई था जो कि ईरान में रिहाइश पजीर था, वो ईरान में रहता था, और जिस तरह हम लोग आज वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं उस तरह ईरान में भी बहुत सारे क्रिश्चियंस और दूसरे मजहब के लोग रह रहे हैं और अमान के साथ रह रहे हैं, कोई जोर जबर नहीं उनके पर। तो ये अब्दुल मसीह कहता है कि मैं ईसाई मजहब का था और बचपन से जो है हम ईरान में पले बड़े थे, मगर शिया लोगों के साथ उठते बैठते थे। इसका काम था वो एक लोहे की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, बड़ी बड़ी लॉरीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं उसके अंदर उसका सप्लायर का काम था। और ये कहता है कि ईरान में बड़े बड़े जो पहाड़ी इलाके और डेंजरस रोड्स होते हैं वो रूट्स पे मेरा सफर रहता था। तो वो कहने लगा एक दिन मैं इस्फहान की पहाड़ियों पर मेरे ट्रक को चला कर जा रहा था और पीछे पूरा लोहा लोहे से भरा हुआ था, लोडेड था मेरा ट्रक। और वो कहता है कि अचानक से मेरा ट्रक जब मैं ब्रेक मारने लगा तो मेरा ब्रेक फेल हो गया, मेरे ट्रक का ब्रेक, मैंने महसूस किया कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर है और ब्रेक जो है वो दब नहीं रहा है। तो एक मरतबा जब ब्रेक नहीं दबा तो उसने कहा ये जो मेरी कार थी, ये जो गाड़ी थी, ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई मेरे हाथ से, और ये जो ट्रक था ये पूरा पहाड़ पे खाई में इस तरह से हो गया कि बस पीछे के लास्ट के दो जो टायर्स थे उस पे ये लटका हुआ था पूरा। मुझे ऐसे नजर आ रहा था कि नीचे बहुत ऊंची फिट की खाई थी और मुझे मौत ही नजर आ रही थी। अब इसने कहा कि मैंने सबको पुकारा, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब एक लम्हे के लिए, वो कहते हैं ना कि जब डूब रहा हो तो उसको एक तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा रहता है। तो कहने लगा कि मुझे जब सारी उम्मीदें सारी आशाएं टूट गई, क्योंकि मैं शिया मजहब के बच्चों के साथ खेलता कूदता था और शिया ईरानी औरतों की आदत है कि जब उनके बच्चे गिरते हैं, कि जैसे हम लोगों की आदत है पाकिस्तानियों की, तो हम क्या करते हैं कि या अली मदद कहते हैं, हम बच्चों को जब गोद में लेते हैं तो हम या अली मदद कहते हैं, मगर ईरानी लोगों की क्या आदत है कि जब बच्चे गिरते हैं तो वो या अबल फज्ल बोलती है। ईरानी औरतें या अबल फज्ल बोल के बच्चे को उठाती हैं, बच्चे को चोट लग जाए तो या अबल फज्ल निकलता है। तो कहते बस बचपन से ये देखा था, अब अचानक से जब कुछ नहीं सोचा तो मैंने या अबल फज्ल करके आवाज दी। कहते मैंने जब या अबल फज्ल करके आवाज दी तो रास्ता पहाड़ी ऐसे ऐसे होता है, तो कहते दूसरी तरफ मुझे नजर आया कि कोई शख्स खड़ा है, तो मुझे इशारा कर रहा है कि अपनी ट्रक को स्टार्ट कर। तो मैंने रो के कहा आगा ट्रक नहीं चल रहा है, खत्म हो गया है, ब्रेक फेल हो चुके। तो फिर मुझे इशारा करता है चला, ट्रक को चला, फारसी में मुझे बोला ट्रक चला। ठीक मरतबा वो तो कहता है कि मैंने फिर चाबी फिराई, जैसे मैंने चाबी फिराई मेरा ट्रक, मुझे ऐसा लगा पीछे से कोई खींच रहा है, और वो ट्रक नॉर्मल होके सड़क पे आ गया। वो कहता है जैसे ही ट्रक सड़क पे आया मैंने ब्रेक मारा, मेरे ट्रक को फेंका और मैं जल्दी से वो जो दूसरी तरफ ऊपर चढ़ के पहाड़ी की तरफ गया, दूसरी साइड पे जो शख्स खड़ा था मैं उसके पास गया। मैंने उसको जाके कहा कि आप कौन है, उसने कहा मैं वही अबुल फजल हूँ जिसको तुमने बुलाया है। तो एक मरतबा ये अब्दुल मसीह कहता है कि मैं रो के आगे बढ़ा तो वो पीछे हट गया, मैं फिर रो के आगे बढ़ा वो पीछे हट गया। तो मैंने रो के कहा ना आगा मैं आपके हाथों को चूमना चाहता हूँ। तो एक मरतबा उन्होंने कहा मेरे पास हाथ नहीं है, और फिर अब्दुल मसीह कहता है कि मैं आपके मजहब में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक मुश्तहिद का नाम दिया और कहा इसके पास जाओ और तू शिया हो और फिक की तालीम दे, और फिर मेरे कदमों को चूमा। अजीज आलिम वाला अबुल फजल अब्बास जो पुकारता है उसकी हाजतों को पूरा करते हैं, कोई ऐसी हाजत नहीं है जो अगर हम पाक नफ्स के साथ पुकारे। और अबुल फजल अब्बास हमें मांगने का तरीका नहीं आता है, अगर जो हमें मांगने का तरीका आता हो तो हजरत अब्बास कभी रद्द ना करें, और अगर मेरे हक में बेहतर हो तो अब्बास कभी देने से गुरेज ना करे। अबुल फजल अब्बास बहुत चाहते हैं। एक दूसरा मौजजा था जिसमें एक औरत का बच्चा मर गया था करबला में, दफन हो चुका था, दफन नहीं गई नजफ में, आई नहीं गई अली के रोजे में, रोती रही। माँ ने कहा चल गुस्ताखी है, ज़ारत पे आए, रोती रही रोती रही। कहा नहीं, मेरा एक ही बच्चा था, मैं अली की ज़ारत पे क्यों जाऊँ, अली ने अली से मांगने आई थी, अली ने बच्चे को छीन लिया। नहीं गई अली के रोजे में, काफिला चला करबला पहुंचा, हुसैन के रोजे में नहीं गई। आखिरी वक्त में उसके भाई ने आके कहा गुस्ताखी को छोड़ और अब्बास को आखिरी सलाम कह दे। जबरदस्ती काफले वाले लेके गए अब्बास के हरम में, जब अब्बास के हरम में लाके बिठाया, जरीन बैठ के बोलती है बाबुल हवाइज है, मेरा बच्चा मर गया, एक ही बच्चा था, बस ये कहना था। जरी में से देखती है बच्चा निकल के आ रहा है, दफन हुआ हुआ बच्चा निकल के आ रहा है। एक मर्तबा बच्चे को देखा, माँ को देखा, कहा अम्मा ये मेरा बच्चा है, कहा ये तेरा बच्चा है। बच्चे को जब बिठाया कहा बेटा क्या हुआ, कहा अम्मा जब गाड़ी में मेरा दम निकल गया मैं मर गया, तो मैंने देखा मैं बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ में हूँ। एक मर्तबा अम्मा मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, मैंने बहुत आवाजें दी, तुम नहीं मिली, मैंने बहुत चीखा अम्मा अम्मा अम्मा। अचानक से एक घोड़े सवार आए, उनके साथ एक नौजवान भी था, और वो आए, उन्होंने कहा बेटा किसको ढूंढ रहे हो, मैंने कहा माँ को ढूंढ रहा हूँ, कहने लगे आओ मैं तुम्हारी माँ के पास लेके जाता हूँ। मैंने दोनों हाथों को ऊंचा किया तो वो घोड़े सवार ने मुझे गोद में लेके, घोड़े पे नहीं बिठाया, वो जवान ने मुझे घोड़े पे बिठाया उनके पीछे। जब मैं उनके पीछे बैठा, वो बच्चा कहता है मैंने पकड़ा तो मुझे शदीद गर्मी महसूस हुई, मैंने कहा ये कैसी गर्मी है, तो वो कहते हैं ये मेरे खून की गर्मी है बेटा जो करबला में बह गया। एक मर्तबा वो बच्चा कहता है कि अम्मा हम यहाँ जरी के पास खड़े थे, उन्होंने कहा अभी अम्मा आएंगी, पर तुम्हारी माँ को मेरा एक मैसेज देना, हम सब के लिए मैसेज है कि मौला ने कहा कि हमसे खफा मत हुआ करो, कभी ये मत समझो जो मुरादें पूरी ना हो कि हमने नहीं दिया, कभी कभार इसमें मसलियत खुदाबंदी होती है। अदाकारा जहरा आगा मोहसिनुल हकीम, इसमें इख्तलाफ है, कोई कहते हैं बहरुल उलूम, कोई कहते हैं मोहसिनुल हकीम। बाहर के एक आयतुल्ला थे कि जिनके पास जो है खुद्दाम आए और कहा कि अबुल फजल अब्बास का रोजा जो है वो मुतगैर हो गया है, उसकी मरम्मत करनी है। आगा कहने लगे मैं और मेरे शागिर्द जाएंगे उस रोजे को बनाने के लिए। कहते हैं आगा ने अपनी कबा उतारी, अपना अमामा उतारा, और जैसे ही कबर के अंदर अपने शागिर्दों के साथ पहुंचे तो एक मरतबा तमाम शागिर्द गिरिया करने लगे और रोने लगे, कहा कि आगा हमने तो रिवायतों में यही पढ़ा है कि अब्बास बहुत कदावर थे, अब्बास की लाश तो बहुत छोटी है, यहाँ कबर तो इतनी छोटी है जैसे छोटे बच्चे की कबर हो। एक मरतबा आगा रोने लगे, रो के कहा तुम लोगों ने सच सुना है, अब्बास इतने कदावर थे कि जब जिलजना पे सवार घोड़े पर सवार होते थे तो पाओ खत खींचते थे, मगर जब शहादत अब्बास के बाद इमाम हुसैन छोड़ कर गए हैं, लेके नहीं गए थे क्योंकि अब्बास ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा खाए लेके जाइएगा, इमाम हुसैन जब छोड़ गए तो पहुंचे अश्किया ने अब्बास की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो कोई गुजरता था कोई तलवार मारता था, कोई तीर से अब्बास को अज़ियत देता था, कोई पत्थर मारता था। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहर पे लाशा दफन करने के लिए आया तो एक छोटी सी गटरी में अब्बास का लाशा आया था, क्योंकि जो सीने पे हाथ रखते थे तो सीना उभर गया।
आशरे को रखा था, और जब मौला दफन करने के लिए अंदर उतरे थे तो रिवायत के जुमले हैं कि मनु ऐसा वाले भी फिक्र में पड़ गए थे कि इतनी देर क्यों लगा दी। जब नीचे झुक के देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन गठरी पर सर रख कर तमाम मसाइब को बयान कर रहे थे। चचा जान सकीना को तमाचे लगे, चचा जान मेरी बहनों बहू बुबियों की चादर लूटी गई। दो जुमले मसाइब के और पढ़ूंगी और आपकी ज़हमतों को तमाम करूंगी। या यसरबी हरम में हज़रत अबुल फजल अब्बास के पेश इमाम थे, नमाज पढ़ाते थे। वहां पर एक जाकिर ने मसाइब पढ़े अबुल फजल अब्बास के, और मसाइब पढ़ते पढ़ते उस जाकिर ने जिक्र किया कि हजरत अब्बास की आंख में तीर लगा था। जब या यसरबी ने ये सुना तो रो रो कर बेहोश हो गए। जब होश में आए तो जाकिर को बुला के कहा, यहाँ आओ जाकिर करीब आए, कहा मुझसे कोई गलती हुई? कहा इतना सख्त मसाइब अब्बास का पड़ा, पता नहीं सच भी है कि नहीं। जब याया यसरबी घर आए और घर आके सोए तो देखा हजरत अब्बास ख्वाब में आए हैं। अब्बास ख्वाब में आके कह रहे हैं, याया मेरे जाकिर को मेरे मसाइब से क्यों रोका? एक मर्तबा याया ने हाथ जोड़ के कहा, मौला मुझे नहीं पता था कि ये मसाइब सच भी है कि नहीं। अब्बास ने कहा, याया अब मैं तुझे मेरे मसाइब बताता हूँ, मेरे जाकिरों से जाके कहना कि ये मसाइब जरूर पढ़े। मौला ने मसाइब कहना शुरू किए। मौला ने कहा, याया मेरी आंख में तीर लगा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। सुन याया, जब मैं नहरे फुरात पर मश्क से कीना भर कर आया, तुझे दगा से मारना शुरू कर दिया, मेरे दोनों बाजुओं को कलम कर दिया। जब मेरे दोनों बाजू कलम हो गए, या सुन, मेरी नजर फकत खैमा हुसैनी के ऊपर थी, मेरे मुंह में मश्क सकीना थी, और बस एक ही दुआ करता चला जा रहा था कि किसी तरह ये पानी में सकीना तक पहुंचा दूं। एक मर्तबा याया मैंने बहुत तेजी से घोड़े को दौड़ाना शुरू किया तो यमना साद ने आवाज दी, अब ये अगर पानी खैमे तक पहुंच जाएगा तो हम कभी भी ये जंग जीत ना सके। सुनो याया, 4,000 तीर अंदाजों ने मुझ पर एक साथ वार किया। 4,000 तीर याया मेरे बाजू भी नहीं थे कि मश्क सकीना की हिफाजत करता। मैंने अपने सर को नीचे झुकाया और मैं मश्क सकीना की हिफाजत करता रहा। वो 4,000 तीरों में से एक तीर मेरी आंख में लगा, याया मुझे बहुत तकलीफ हुई। याया मेरे बाजू भी नहीं थे कि मैं वो तीर को निकालता। याया मैंने अपने दो घुटनों से वो तीर को निकालने की कोशिश की, याया मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर 4,000 तीर जब चले तो मैंने महसूस किया आंख में तीर था, कोई छेद भी आंख में चली जाती है तो कितना इंसान बेचैन होता है। मौला कहने लगे, याया मुझे बहुत तकलीफ थी। एक मर्तबा मैंने महसूस किया कि तीर मश्के सकीना पर लग गया। मैंने अपने जिस्म पर पानी को गिरते हुए महसूस किया। एक मर्तबा मैंने अपने घोड़े से कहा कि अब रुख को मोड़ ले। याया मुझे बहुत तकलीफ हुई। याया जब कोई घोड़े सवार, मौला खुद अब्बास कह रहे हैं, जब कोई घोड़े सवार जमीन पर आता है तो अपने बाजुओं का सहारा लेता है। याया मैं शाह सवार, मैं अबुल फजल अब्बास, मैं जब घोड़े पर सवारी करता था तो मुझे सब शाह सवार कहते थे। याया जब मैं घोड़े से गिरा तो मेरे चेहरे के बल गिरा वो तीर और बेबस हो गया मेरी आंख में।